ಒಂದು ಶಾಂತಿ. ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಯ್ कुछ वर्षों पहले की बात है, सत्य घटना. सर्दियों के दिन थे और जनवरी का महीना 26 तारीख. यहाँ के हम कुछ भाई बहने 26 लोग थे. 26 तारीख थी, 26 जनवरी 2-3 साल पहले, 2014. 26 जनवरी के दिन हम गए थे मिंडीनक्की लेक से गुलाबगंज जंगल के अंदर से. तो क्या हो, जिनको रास्ता मालूम था वो रास्ता भूल गए. दो लोगों को रास्ता मालूम था, 24 लोगों को रास्ता मालूम नहीं था. तो जहां तक पगडंडी जाती थी, आगे जाके बरसातों के कारण रास्ता छुप गया था, झाड़ियां झाड़ियां थी. तो वहां से रास्ता फिर जानवरों का रास्ता बन गया होगा, या कोई लकड़ी ले रहे जंगल में लोग जाते हैं तो उनका रास्ता बन गया होगा. तो हम फिर उस रास्ते में चले गए और रास्ते में जाते जाते लंबा रास्ता तय कर लिया, लगभग 5-6 किलोमीटर तक पहुंच गया. तो पहुंचते पहुंचते वहां फिर देखा वहां आगे रास्ता बंद हो गया, रास्ता ही नहीं है. वहां लगभग 20 पार्क तक पहुंच गया अंदर ही अंदर. तो आगे फिर थोड़ा जानवर जैसा झाड़ी जैसा रास्ता होना जिसमें छोटे छोटे जानवर जा सकते हैं, और आगे उसमें मैं ही था. आगे घुस गया हम सभी, जैसे तैसे सब पहुंच गए. तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया हमने. फिर आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. अब वापस लौटने को भी तैयार नहीं था कोई भी, इतना वापस कौन आएगा. तो आगे हम थोड़ा और झाड़ियों से निकलते हुए गए तो एक नाला, काफी बड़ा नाला था, उसमें से हम उसमें पहुंच गए पानी के रास्ते से, जो पानी का रास्ता होता है. तो नाले में लगभग 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे, वो रास्ता ठीक था. सब लोग खुश हो गए कि हम शॉर्टकट रास्ते में आ गए और जल्दी पहुंच जाएंगे नीचे. जैसे 2 किलोमीटर और आगे गए तो रास्ता बहुत कठिन हो गया, और इतनी इतनी बड़ी चट्टानें, इतनी इतनी बड़ी गहरी खाइयां, एक जगह हम ऐसे पहुंचे कि जहां से जाना नामुमकिन था, बड़ी गहरी खाई. अब सब लोग वहां जाकर पहुंच गए और वहां वापस आने को कोई तैयार नहीं. वहां पहुंच कर सब लोग असमंजस में पड़ गए, अब क्या किया जाए, वापस कोई जाएगा नहीं. बोला भी जाएंगे कैसे, जैसे तैसे करके. तो वहां सबको बाबा ना चाहते भी याद आया, ऐसी अवस्था हो गई थी. कुछ लोगों ने तो फिर वहां 2-4 लोगों ने हिम्मत करके वहां जैसे तैसे खाई में कूद कर पहाड़ी पकड़ पकड़ कर चलना शुरू किया. चलते चलते तकरीबन 2-3 किलोमीटर और आगे चले गए और खतरनाक रास्ता आ गया. इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने, ये दिन का टाइम था लेकिन रात की महसूसता थी इसमें. टाइम दिन का था लेकिन महसूसता रात की हो रही थी. तो आगे पहुंचे, आगे बहुत गहरा, गहरी बड़ी बड़ी खाइयां आ गई. और कुछ लोग तो जो पहाड़ी एरिया के हैं उनको चलने में इतनी दिक्कत नहीं, जिनको पहाड़ी एरिया के नहीं थे ये थे नहीं उसमें, तो उनमें उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम. और अंदर में सभी जैसे एक भयभीत हो रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो गया तो वहां से उठा के नहीं लाया जा सकता, क्योंकि किसी को दम ही नहीं है इतना. वहां तो खुद चलने की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है तो किसी को उठाएंगे कैसे. और आगे थोड़ी दूर जाके 2 जने तो घायल हो गए, एक गिर गया, चोट लगी थोड़ी सी. डॉक्टर 2 साथ में थे, आशीष भाई और विनय डॉक्टर. तो फिर वहां जाकर 1-2 भाइयों को लगी, तो खैर जैसे मलम पट्टी करके उनका थोड़ा आगे चलना शुरू किया. आगे जाके एक भाई को थोड़ा और घुटना जैसे टकरा गया चट्टान के साथ. अब वहां वो इतना भयंकर उसको अंदर में विस्फोट होने लगा, ये सब सुनना पड़ा. हम बिल्कुल शांति से सुनते रहे क्योंकि प्रोग्राम हमारा ही बनाया हुआ था. तो सुनते रहे. आगे जाके वो चट्टाने इतनी खतरनाक आ गई कि रास्ता बिल्कुल है ही नहीं है. तो नागेश भाई कितने लंबे हैं, केवल इतना इतना गर्दनवार थी, ऐसी चट्टानों के बीच से हम जा रहे थे। और जाते जाते एक जगह ऐसा है कि वहां से उतने को रास्ता नहीं है। वहां एक पेड़ था, लगभग 25-30 फुट का होगा, एक ही पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर से हम नीचे उतरे, नीचे उतरे तो आगे जाके नीचे रास्ते पर पहुंचे, पकड़ पकड़ के। लोग पेड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन हम पेड़ से उतरे डायरेक्ट, पेड़ से उतरे। जैसे तैसे हम नीचे पहुंचे, बहुत खतरनाक चट्टान है। जैसे हम नीचे पहुंचे तो नीचे हमको दो तीन लोग मिले, चरवाहे जो भैंस और बकरियां चला रहे थे। तो वो कहते हैं, आप लोग इधर से कैसे आ गए? तो हमने बोला, भाई ऐसे आ गए, हम चल चल के आ गए। बोला, इस एरिया में बहुत खतरनाक अजगर रहते हैं, आप लोग कैसे बच के आ गए? हम तो इधर इसलिए खड़े रहते, बकरियां इस तरफ जाए ना। तो मना अंदर में ऐसी महसूसता आ रही थी कि अगर किसी के पकड़ में आ गया अजगर के में, तो कोई चला जाएगा। और दूर दूर सब फैल गए थे। तो मना वहां बाबा ना चाहते भी याद आ रहा था, जंगल में सहारा ऐसे आता, भगवान याद आता है। तो कुल मिलाकर हम नीचे पहुंचे, तो नीचे गुलाबगंज। तो गुलाबगंज जो रास्ता 2.5 घंटे का था, 7 घंटे में तय किया हमने वो। तो जैसे तैसे नीचे पहुंच गए जाके। तो माना ऐसे मौके पर बाबा याद आता है। ये तो हमारी है, जो दुनिया वाले हैं उनको बाबा याद थोड़ा आता है, दिन में तारे दिखते हैं। तो जैसे तैसे पहुंचे, वो भी एक यादगार बन गया। तो माना अगर हम जाते हैं, अगर हमको रास्ता नहीं मालूम है, तो ऐसे भटकना पड़ता है। अगर साथ अंधकार है जीवन में, अगर रोशनी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ऐसे हम भी इस ज्ञान मार्ग पर भी भटकते रहते हैं। रोशनी होते हुए भी अंधकार में जीने को विवश हो जाते हैं जैसे। तो ये जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, इसमें अंधकार कहाँ कहाँ आता है और कैसे आता है, क्यों आता है, उससे मुक्ति पाने की विधि क्या है? वास्तव में अंधकार है विस्मृति। जैसे हम ज्ञान से विस्मृत होते हैं, ज्ञान बुद्धि में होते हुए भी समय पर याद नहीं आता है, तो फिर अंधकार की महसूसता होती है। तो फिर जीवन में निराशा आती है, उदास हो जाते हैं, ज्ञान का रस नहीं बैठता है, पुरुषार्थ करने को मन नहीं करता है, अकेलापन रहता है। तो माना केवल सारा विस्मृति के कारण ही जीवन में फिर अंधकार का अनुभव होता है। तो पहले तो हमको स्वयं को रियलाइजेशन करना है कि हमारे जीवन में अंधकार है, अभी भी बहुत अंधकार है। जिस अंधकार की बदौलत हम जो अपना ऊंच लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जीवन में रस नहीं बैठ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो अंधकार की महसूसता भी चाहिए कि किस किस बात में हम अंधकार में हैं। जैसे हम सबको यहाँ या कहीं भी कोई होमवर्क मिलता है, तो हम जैसे हाथ पीछे खींचते हैं, क्यों? इतने सालों चलने के बावजूद भी हमारे मुख से ज्ञान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसका मतलब अभी भी हम बहुत अंधकार में हैं। इतना ऊंचा ज्ञान, और जिस ज्ञान को सुनने सुनाने से हम डरते हैं, कतराते हैं, अर्थात अंधकार में जीना हमको जैसे सुख में भासता है, अर्थात पुरानी बातों को हमने भी पकड़ के रखा हुआ है। तो पहले तो हमको महसूसता चाहिए कि सचमुच अभी भी अंधकार हमारे जीवन में बहुत है। जब तक रियलाइजेशन नहीं है, तब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा। रियलाइजेशन रिवाइज तो बाबा ने पहले अव्यक्त साकार मूल्या में सुना दी, रिवाइज कोर्स भी हो गए, अभी है रियलाइजेशन कोर्स। अगर अभी भी हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में हम आने वाले क्या अभी वर्तमान में भी स्वयं को धोखा दे रहे हैं, समझिए। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है रियलाइजेशन की, कि हमें कहाँ कहाँ जीवन में अंधकार है, उसको हमको गहराई से अपने आप को समझना है, देखना है, जांच करनी है, उसके अटेंशन से चेकिंग करनी है, उस अंधकार से मुक्ति पाए कैसे। एक दो के सहयोग से तो हमें ठीक है आगे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन शक्ति तो हमको खुद की ही पैदा करनी पड़ेगी, जिसके कारण हम आगे बढ़ सकें। बाबा ने तो हम सबको सब प्रकार के ज्ञान के बिंदु बता दिए हैं, सब प्रकार की विधियां बता दी हैं। अगर वो जानने के बावजूद भी हम उनसे अनभिज्ञ हैं, तो जैसे हम अपने आप को ही वंचित कर रहे हैं बाबा के प्यार से, बाबा की शक्तियों से। तो महसूसता की शक्ति बहुत जरूरी है। दूसरा, महसूसता के बाद फिर परिवर्तन, कि हमें जीवन में परिवर्तन होना है, परिवर्तन होने की इच्छा चाहिए। जब तक इच्छा नहीं है, तो परिवर्तन इतनी तीव्र गति से नहीं होगा, तो इच्छा भी जैसे तीव्र इच्छा चाहिए उसके लिए फिर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने के लिए, अपने लिए अपने पुरुषार्थ को देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ मैं लूज हूँ। अगर टाइम नहीं देते हैं तो टाइम तो हमारा दूसरी बात तो मैं कहीं जा रहा है, टाइम तो सभी के पास है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि टाइम किसी के पास नहीं है। जितना हम सब ब्राह्मणों के पास टाइम है शायद दुनिया में और किसी के पास टाइम नहीं है, और उस टाइम को हम ऐसे ही गवा देते हैं। तो सूक्ष्म रूप से उसकी भी जांच करनी पड़ेगी कि समय हमारा कहाँ जा रहा है, सवेरे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन बातों के कारण मैं घाटे में जा रहा हूँ, जिनके कारण अतीन्द्रिय सुख से वंचित हो रहा हूँ, जो बातें हमारे बुद्धि में ज्ञान को बैठने नहीं दे रही हैं। जैसे हम मुरली तो सुन रहे हैं लेकिन क्यों नहीं हमारी बुद्धि में बैठ रही है, इतने लंबे समय से हम ज्ञान योग भी कर रहे हैं, इतने लंबे समय से धारणाएं भी हमारे जीवन में हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान के बिंदु हमारी बुद्धि में क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। तो खुद की जांच करनी पड़ेगी, उसके लिए समय देना पड़ेगा, समय के महत्व को समझना है, वास्तव में समय कौन सा चल रहा है। अगर इस समय को हम ऐसे गवा देंगे तो जार जार होकर बाबा कितना रोना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा दुख जो फिर अंत में हम सब ब्राह्मणों को होगा, दुनिया वालों को इतना दुख नहीं होगा क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है, हमको फिर ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू बहाने पड़ेंगे कि हम जो करना चाहते थे और जो कर सकते थे और वो हमने किया नहीं, तो उसके बावजूद हमको कितना पछतावा होना पड़ेगा। फिर तो वही कहना पड़ेगा पछताए कि आदम चिड़िया चुकी घिर, फिर तो बाबा भी साक्षी हो जाएंगे क्योंकि कोई किसी को अंत में मदद करने वाला नहीं है। मदद का जो समय है वो अभी, हम चाहे बाबा से मदद का अनुभव कर रहे हैं चाहे ब्राह्मण परिवार से, तो समय को सामने रखते हुए हमें इस संगम के अनमोल समय को भी पूरी तरह सफल करना है, सफल नहीं बल्कि उसका पूरा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करना है। एक बार यह समय हाथ से निकल गया दोबारा नहीं आएगा, एक एक पल बीतता जा रहा है, हमको ऐसे माना हर पल में महसूसता हो कि जैसे जीवन जीने का हम आनंद ले रहे हैं, युद्ध में जीवन ना जाए खुशी में बीते जीवन। तो समय का भी जीवन में महत्व है, और दूसरा साथ साथ में इसके लिए फिर ज्ञान की पराकाष्ठा भी चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास इतना है तो समय को बिताएंगे कहाँ, लंबे समय से हम जो ज्ञान सुनते आ रहे हैं वो कहाँ तक हमारी बुद्धि में बैठा है, अर्थात मन में जो ज्ञान की संपदा है वो भरपूर होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन एक ही दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है, लंबे समय की साधना की बात है। जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो हमको यहाँ सुनने को रोज मिलते हैं, जैसे आजकल मनसा सेवा की बात चल रही है, या कुमार जीवन पड़ा कुमारी जीवन है, जो भी अलवेला आलस्यपन है, या अनेक प्रकार की अव्यक्त वाणियां हैं, संडे की मुरली होती है, रोजाना मुरली होती है, जो भी हमारे मन को अच्छे अच्छे जो ज्ञान के रत्न हैं जो अच्छे लगते हैं उनको हम संग्रहण करें, बुद्धि में संग्रहण करें, उसको फिर रिवाइज करें रोज, हमारे जैसे कर्तव्य क्या क्या हैं उनके प्रति हम सजग रहें, तो जीवन में हम इस अंधकार से मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा प्रकाश होते हुए भी, इतना सुंदर ज्ञान होते हुए भी हमारा जीवन जैसे नीरस होता जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों। स्वयं भगवान सुप्रीम अथॉरिटी सर्वशक्तिवान जो सारी दुनिया को प्रकाशित करने वाला है वो हमारा अगर साथी है, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है, लौ नहीं है, तो फिर जीवन का औचित्य क्या है। फिर तो जैसे लगेगा जैसे बाहर वाले हमारे में फिर क्या फर्क रहा। तो स्वयं को समय देकर ज्ञान से स्वयं को भरपूर करना है तो हम जीवन से मुक्ति पा सकते हैं, नहीं तो फिर अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम मुरझा जाते हैं। ऐसे लंबे समय से हम श्रेष्ठ साधना करते रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा को हम श्रेष्ठ बनाएंगे, तो पुण्य की पूंजी अर्जित होगी, और वो पुण्य की पूंजी अर्जित होने के बाद वो समय पर हमारे काम में आती है। जब परिस्थितियां आती हैं, जब कोई सहारा अनुभव नहीं होता है, तो वो पुण्य के जो खाता है वो फिर काम करना शुरू करता है, है ना। जैसे एक बार की और घटना है, 3-4 साल पहले मैंने पढ़ा था एक न्यूज़पेपर में, शायद कहीं और पढ़ा था, 3 दोस्त थे, ये गुजरात की बात है शायद, जूनागढ़ के जंगलों की 3 दोस्त थे। तो 2 दोस्तों का ऐसे विचार हुआ जंगल में घूमने का, छुट्टियां थी 2, तो सोचा हम जंगल में जाएं और देखें वहां पिकनिक करें। तो 2 दोस्तों का आपस में विचार हुआ, फिर उन्होंने सोचा 3रे दोस्तों को भी साथ ले सकते हैं, लेकिन 3रे दोस्त के साथ पास जब वो गए तो 3रे ने कहा कि मेरा जाने का भी मन नहीं है, फिर भी वो उसको मना लिया उसने, जैसे तैसे करके उसको साथ में ले गए। तो जैसे वो नेक्स्ट डे जंगल में पहुंचे, घूमते घूमते बहुत आगे निकल गए, एक साथ में गाइड भी था, तो आगे उन्होंने देखा एक हिरण पानी पी रहा है और उसकी तीन टांगे हैं। तो दोस्त दोस्त तो वहीं बैठे रहे, तीसरा उनको देखने गया। जैसे उसके पास में पहुंचा हिरण, तो हिरण भी पानी पीते हुए उसके पास में आने लगा, और पास में आते आते वो हिरण परिवर्तन हो गया एक चुड़ैल में, एवल सोल के रूप में परिवर्तन हो गया। ऐसे उसको दिखाई दिया, उसने कहा कि सत्य घटना है, लेकिन इसको कोई जाने, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा वो अलग बात है, कहानी भी हो सकती है, लेकिन हम उस तो हमको तो उससे प्रेरणा लेनी है। तो जैसे वो चुड़ैल में परिवर्तन हो गया और वो पास में आ गया, और वो उसने उसको भाई को गिरा दिया, और वो चुड़ैल उसके सीने पर बैठ गई, तो बैठ गई वो छटपटाने लगा। अब जो दूर दूर से दोस्त थे, जो दूरी पर बैठे हुए थे, तो इस घटना को देख रहे थे, उनको चुड़ैल ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी एक्टिविटी जो हिलने वाला वो तो दिखाई दे रहा था सारा उसको। तो वो उसके पास गए, बोला तुम क्या कर रही है? तो वो तो और ही चिल्ला रहा है। तो फिर उन दोनों दोस्तों ने उसको पकड़ के खींचा, तो उससे छुड़ा लिया जैसे समझ लीजिए। तो वहां से वो मुक्ति हो गई, लेकिन बहुत डरा हुआ वो, बहुत डर गया, आंखों जैसे पसीने से उसके एकदम गीला हो गया, बहुत उसके मन में भय बैठ गया। फिर जैसे तैसे वो वहां से वापस आ गए होटल में, रात को रुके थे, होटल में पहुंच गए। सुबह का टाइम होता है, जब अंधेरा जा रहा होता है, तो दरवाजा, जिस होटल में वो ठहरे थे, दरवाजा खटखटाता कोई, और बाहर देखता है कि बाहर जो रूम बॉय होता है, उसको संभालने वाला केयर टेकर होता है, वो खटखटा रहा है। तो उसको बुलाया कि आपके जो भाई है सोया हुआ था, जिसके साथ ये घटना घटी, उसको बुलाया कि आपके पिताजी बुला रहे हैं आपको सड़क के ऊपर। तो जैसे वो सड़क के ऊपर गया, सवेरे का टाइम था, तो देखा पिताजी खड़े हैं। तो पिताजी फिर उसको ले गए उसी जगह जंगल की तरफ, तो वहां जाके फिर वो उसका रूप चेंज हो गया, फिर वही चुड़ैल हो गई वो, फिर वही घटना घटी। तो फिर उसको चुड़ैल वो नोचने लगी, फिर वो चिल्लाया। हाँ,
टोटल माने एविल सोल,
एविल सोल, चुड़ैल और भूत होते हैं दो, भूत होता है भाई और भूतनी होती है बहन, उसको भूतनी को चुड़ैल भी कहते हैं, समझिए? हाँ, एविल, हाँ, तो वो चुड़ैल होती है। अगर आपको दिख जाए तो पता चलना चाहिए ना चुड़ैल की क्या पहचान है, इसलिए पता होना चाहिए। तो वहां जब जंगल में पहुंचे, ओ तो बहुत चुड़ैल में परिवर्तन हो गया, और वो फिर उसके सीने पर बैठ गई। अब तो ना दोस्त थे ना कोई आस पास था, तो किसने बचाया होगा? बाबा ने, वो तो हमारी भाषा में नहीं। फिर एक दूसरा उसको व्यक्ति दिखाई दिया, जो सफेद पोश तारीखा था कोई, हाँ, फरिश्ता होगा या कोई दूसरी आत्मा होगी, उसने उसको बचाया आके। उनके आपस में दोनों की लड़ाई लग पड़ी होने, चुड़ैल और को जो दूसरा आया गोस्त, तो उनके आपस में लड़ाई होने लगी। तो उसने उसको क्यों बचाया? जरूर उसने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य कर्मों की बदौलत उस आत्मा को उसको बचाने के लिए जैसे विवश होना पड़े, क्योंकि मौके पर उसने उसको अपना मदद किया होगा, तो उसने बचाया। फिर जैसे उसने देखा कि वो तो भाग गई चुड़ैल वहां से, और वो भी अदृश्य हो गया। तो जैसे वापस होटल में आया, तो होटल पर उसने पता किया कि वेटर को, उसको जो रूम बॉय था केयर टेकर, उसको पूछा आपने क्यों जगाया? बोला मैंने जगाया ही नहीं, और पिता भी नहीं था, पिता तो घर में था। तो माना ऐसी ऐसी जीवन में घटनाएं घटित हो जाती हैं, जो हमें, हमारा अगर पुण्य का खाता है तो वो हमें बचाती हैं। तो इस ब्राह्मण लाइफ में भी हमें इतना पुण्य अर्जित कर लेना है जो हमें समय पर काम आए, जैसे बीमारियों के समय आता है, नहीं तो सुनने के लिए आता है इतने लंबे समय से बाबा से जुड़े हो, बाबा तो मदद ही नहीं करता है, बाबा भी मदद क्यों करेगा, इतने लंबे समय से मैंने पुण्य जमा किया ही नहीं, तो मदद कैसे करेगा? तो अगर हमारे खाते में जमा नहीं है, इतने समय से हमने बाबा को याद नहीं किया, केवल बाहर से परिवर्तन हो गए लेकिन अंदर से उसको स्वीकार ही नहीं किया, उसकी शक्तियां अपने में भरी नहीं है, उसको उसके ज्ञान को सही तरीके से सुना नहीं है, उसका ज्ञान हमारी नसों में समाया नहीं है, तो फिर वो भी मदद कैसे करेगा? तो पुण्य की पूंजी भी जीवन में अर्जित करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पुण्य की पूंजी नहीं है तो जो परिस्थितियां आती हैं समय समय पर, छोटी समस्याएं आती हैं, उनमें हम ऐसे घबरा जाते हैं। फिर दूसरा, हमारे जीवन में त्याग भी बहुत जरूरी है। त्याग हमें किन किन बातों का करना है? दुनिया को तो त्यागना बहुत सहज है, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें त्याग करनी है। साधना तो वास्तव में जैसे दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाते हैं, साधना भी और सूक्ष्म होती जाती है, साधना भी और कठिन होती जाती है। शुरू शुरू में तो हम बाबा बाबा करते हैं, बहुत आगे बढ़ते जाते हैं, उस समय तो बाबा ने हमारी उंगली पकड़ी होती है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बाबा भी उंगली छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे हैं, बाबा अपनी खुराक खिला रहा है। अगर खुराक को हम अपना खा के अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं, शक्तिशाली नहीं बन रहे हैं, मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो कमजोर रह जाएंगे, और कमजोरी के कारण फिर अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, उनमें हम दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने जीवन में जैसे ज्ञान की रोशनी हमेशा हमको प्रज्वलित करके रखनी है, योग की जैसे अग्नि जलती रहे, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में सदैव जो जगमगाता रहे, तो जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हमारे में हिम्मत भी आती है, वीरता भी आती है, साहस भी आता है आगे बढ़ने का। ज्ञान में जितना डिफिकल्टी कोई समस्याएं आती हैं कि बहुत गहरे गहरे जो टॉपिक होते हैं, कईयों को तो ऐसे होता है, जैसे कुछ दिन पहले संडे की मुरली थी तो हम दो भाई आपस में चर्चा कर रहे थे, तो कहता है मुरली मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने क्यों नहीं समझ में आ रही है, दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने दूसरी बातें कैसे समझ में आ रही है, ये क्यों नहीं समझ में आ रही है। उसको हम यथार्थ रूप से टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुरली समझना कुछ सहज काम नहीं है। बार बार पढ़ने से हम ये देखते हैं खुद, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एक बार तो खाली खाली पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उसके अर्थ का पता पड़ता है। फिर कई सालों के द्वारा पढ़ते तो उसके अर्थ और ही कुछ निकलते हैं। तो जो बाबा की महावाक्य एक एक बहुत गहरा है, तो इसको हमको जैसे कल भी जिक्र कर रहे थे बहन जी, कि सीखने की ललक हमारी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर सीखने का उमंग सा नहीं है और हम बैठ गए जी हमको तो सब मालूम है, रोज रोज मुरली में वही बातें आती हैं, तो फिर जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, वो हम ठहर जाएंगे कि हम सबको मालूम है वही वो तो बातें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी ज्ञान के बिंदु है बहुत गहरे हैं। तो दिन प्रतिदिन हम सबको ज्ञान में नवीनता चाहिए, रमणीकता चाहिए, गंभीरता चाहिए। गंभीरता पूर्वक इस ज्ञान को हम रुचि से पढ़ेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे उसके ऊपर, तो फिर जीवन में नवीनता भी आएगी, उमंग उत्साह बढ़ेगा। अदरवाइज मुरलियां ज्यों की त्यों पड़ी रहेंगी, जीवन में वो उमंग उत्साह नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा जीवन जीने का। तो ज्ञान की लो हमेशा रखनी चाहिए, तो ही फिर अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां जो डराने वाली जो दूसरों को लगती है वो हमको नहीं लगेगी। हमको याद है पिछले जन्म में अर्थात इसी बचपन में शुदर लाइफ में हम बचपन में दो हम तो वैसे पांच भाई हैं, लेकिन हमको बचपन में पिताजी भेजते थे खेतों में खेत की रखवाली के लिए, तो घर से 2-3 किलोमीटर दूर जाते थे, तो वहां तो जंगल ही होते हैं, तो रात को सुअर वगैरह जानवर तो काफी आते थे मक्की वगैरह खाने के लिए। बरसात के दिन होते थे, जोरदार बरसात होती थी, नीचे हम खेतों में अकेले सोए, कोई कई बार तो हम दो भाई कई बार तो हम अकेले जाते थे घर से, तो कोई डर ही नहीं उस समय। और वहां से ऐसे होता था फिर हम तो घर में भी ऐसे वहां से 7-8 किलोमीटर दूर रामलीला होती थी, तो घर में तो कोई टीवी वगैरह होते थे नहीं, वैसे संस्कृति तो होती नहीं कोई भी, तो हम रात को ही वहां से हम दोनों भाई उठकर वहां चले जाते थे अकेले अंधेरे में। तो वो डर था ही नहीं उस समय अंदर, और टॉर्च वॉर्च तो होती नहीं थी उस समय, तो जो ये लकड़ियां होती हैं, एक तो लकड़ी सिंपल लकड़ी होती है ना छोटी छोटी, लेकिन दूसरी लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों को पानी में दबाने के बाद जो निकलती हैं उनकी जो ऊपर से छाल निकाल कर उनको रस्सी बना दी जाती है, और जो बाकी जो लकड़ी बचती है वो सफेद लकड़ी होती है, और वो सफेद लकड़ी लंबे समय जलती रहती है, तो हम वो लेकर जाते थे। तो इतने घने जंगल से जाते थे कोई डर ही नहीं होता था, प्रकाश था, नहीं हम भगवान का नाम सुनने जाते थे,
रखवाली करने के लिए था।
रखवाली के लिए हम भगवान को कहने जाते थे, और सवेरे हमको टाइम से पहले भी पहुंचना है, क्योंकि पिताजी 5 बजे खेत में पहुंच जाएंगे वहाँ, तो हमको 4 बजे वहाँ पहुंचना वापस, और रामलीला जाके जरूर देखनी है, बहुत दूर होते थे जाके, क्योंकि ऐसे कोई साधन थे ही नहीं वहाँ कोई मनोरंजन के साधन, तो हम रात को ऐसे दूर दूर को खेतों में एक दो को जगा कर आपस में ऐसे जाते थे। तो जीवन में ज्ञान की रोशनी अति आवश्यक है, रोशनी जीवन में है तो जीवन में जीने का मजा आएगा। आज भी जंगलों में बहुत सारे लोग रहते हैं, यही माउंट के जंगलों में, ये आपने देखा होगा अरना गांव रास्ते में जाते हनुमान जी, जहां हनुमान जी का मंदिर, जहां फौजी सैल्यूट मार के खड़ा है, वहां अंदर में रास्ता जाता है वहां से ऋषिकेश शांति तक, तो वहां से तकरीबन 7-8 किलोमीटर गहरे जंगल में आज भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो देखा हमने वहां जाके, अभी 8-10 दिन पहले हम गए थे, जंगलों से हमें प्यार है अभी, तो हम जाते रहते हैं। हाँ अभी भी वो जंगल में हैं लोग। और पहले पहले तो हमको ऐसी आदत थी तो मैं अकेला पीछे जंगल में चला जाता था, लेकिन फिर एक दोबारा जगह वगैरह देखे फिर नहीं मैं गया। तो ऐसी आदत थी। तो वो जो भाई अभी भी जंगल में वो रहते हैं, देखा हमने उनको, उनका रहने का तरीका कैसे, बड़ा सिंपल है, एक चार दीवारी सी बनी है, तो उसी में उनका खाने पीने का थोड़ा सा सामान है। उनके असली घर तो ऊपर है, लेकिन जंगल में पशुओं का उन जो घास वगैरह होता है तो इसलिए वो जंगल में रहते हैं, घास कौन लाएगा। तो सवेरे और शाम का दूध एकत्रित करके वो ऊपर ले आते हैं, लेकिन रहने के लिए वहाँ छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं, ऊपर से छोटा सा घास फूस डाला हुआ है और चारपाई भी जैसे जंगली टाइप की बनाई हुई है। और बड़ी बड़ी फैमिलियां रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो उनका सहारा कौन है जंगल में, उनके भी पुण्य कर्म, भगवान को तो याद करते होंगे, लेकिन जीवन में उनके ऐसी कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव इतना कुछ सोचते नहीं है, उनको टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, क्योंकि संसार के जो चकाचौंध में हम सब फंस गए हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति की जो आंधी चल रही है, जिसके कारण विकारों की जो दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, वासनाएं बढ़ रही हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा की बदौलत ही हमारे जीवन में डर पैदा हो रहा है। नहीं तो उनको डर क्यों नहीं है, इतने इतने भयंकर जानवर रहते हैं वहां, भालू हैं, चीते हैं, अजगर हैं, और वो जंगल खतरनाक जंगल है अभी भी, हमने जो देखा 8-10 दिन पहले। तो उनके अंदर में क्या है, उनको डर क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा नहीं है उनके अंदर। और हम सब के अंदर वो लंबे समय से तो हमने देखा हुआ है, बचपन से लेकर पाश्चात्य संस्कृति की या जो भी हम टीवी की संस्कृति है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, और वो हमारे अंदर में घर कर गई है अभी। अब उस ऊर्जा को निकालने के लिए यही ईश्वरीय ऊर्जा को हम जीवन में जितना इकट्ठा करते जाएंगे, जितनी हमारी साधना बढ़ती जाएगी, तपस्या बढ़ती जाएगी, तो हम नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होते जाएंगे, तो हम अंधकार से मुक्त होते जाएंगे। और अंधकार बताया विस्मृति, और जो जंगल है वो जंगल है हमारा देह अभिमान, और घना जंगल देह अभि देह के जो जितने आगे संबंध बढ़ रहे हैं उन संबंधों को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन बुद्धि से अभी भी हो सकता है उनको पकड़ के रखा हुआ है, या यहाँ आकर फिर नए संबंध जोड़ दिए हैं, नए बाबा को सर्व संबंधों से याद नहीं कर रहे हैं, तो वो जो संबंध है दिन हमारे बहुत गहरे हो चुके हैं, चाहे वो माता है, पिता, भाई, बहने, कोई भी है, काका, चाचा, मामा, अगर बुद्धि हमारी बार बार वहां जा रही है तो वही हमारे जीवन में एक अंधकार है, घना जंगल है। तो उससे भी मुक्ति पाने के लिए हमको ज्ञान की जो प्रकाष्ठा, दिन प्रतिदिन ज्ञान की संपदा है, वो मन के अंदर इकट्ठे करते जाना है। जितने हमारे अंदर वो ताकत होगी, जितनी लौ होगी, प्रकाश होगा, उतना हमारे जीवन में एकदम स्मूथ चलता जाएगा, निर्विघ्न चलता जाएगा। स्वयं को स्वयं ही जांच करनी है, दिन प्रतिदिन हमारी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, नहीं तो जीवन में फिर सहारा अनुभव नहीं होगा। बाबा भी उस कहते हैं ना, बचपन में जो हम सुनते थे, परमात्मा उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप करता है, तो हम बचपन से हम सुनते आए हैं, तो वो वास्तव में लागू तो अभी होता है, ये अभी लागू हो रहा है कि जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया उसको हम अप्लाई कहाँ कर पा रहे हैं, उसको हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना उसका सुख ले रहे हैं, कितना हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को, सवेरे से लेकर जो भी हमको चार सब्जेक्ट मिले, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें हमारा दिन कहाँ तक व्यतीत हो रहा है, ज्ञान के लिए हम कितना समय दे रहे हैं, योग के लिए कितना समय दे रहे हैं, धारणाओं में हमारे में कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ हमारी दृष्टि बिती जाती है, कहाँ हमारे बुक से बोल ऐसे निकल जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, कहाँ हमारे जो मनसा संकल्प ऐसे चलते जा रहे हैं, कहाँ हमारे कर्मों में ऐसी श्रेष्ठता नहीं है जो दूसरों को भी प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को भी पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ने का जो है मार्ग नहीं दिखवा रहे हैं, या हमें देकर कोई पुरुषार्थ ही न हो रहा है, तो सूक्ष्म में कितना पाप हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क जो भी है, जैसे कल के वरदान में था ना, योग्य शिक्षक बनो, उसको जो योग्य शिक्षक है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसका स्वरूप ही, उसके चाल चलन चरित्र, ब्रह्मावा का जो एग्जाम्पल दिया बीच में कि ब्रह्मावा का चरित्र ही कैसे था, उनका चरित्र ही था, उनके चरित्र से ही लोग आगे बढ़ने शुरू हो गए। तो हमारे जीवन में भी जो हमारे पिता के संस्कार है, जो हम बाप के संस्कार है, वो ही हम सब बच्चों में दिखाई देने चाहिए। तो दिन प्रतिदिन हमें अपने ऊपर ही थोड़ा आंख रखनी है, दृष्टि रखनी है, नजर रखनी है, ताकि हम दिन प्रतिदिन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। क्योंकि आगे चलकर तो आगे क्या अभी भी देखते हैं, बहुत सारे बीके के ऐसे ऐसे अभी अभी मैसेज आते हैं, जैसे कहते हैं हमारे लिए योग करो, अब इतने लंबे समय से चल रहे हैं, और फिर अगर वो हमारे मुख से निकले हमारे लिए योग करो, तो हमने क्या किया इतने सालों से क्या किया था? तो दूसरे के योग से हमारा कहाँ परिवर्तन होगा? ठीक है, दूसरे को थोड़ा उमंग उत्साह से आगे बढ़ाने के लिए चलना तो खुद को पड़ेगा ना, खाना मुख में डाल दिया पचाना तो खुद को ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी जो कंप्लेंट हैं जो हमारे मन को उद्वेलित करती हैं या हमारे मन को हलचल में लाती हैं, इनसे मुक्त होने के लिए हम सबको जो बाबा की दिनचर्या है, जो बाबा के ज्ञान ज्ञान के बिंदु हैं, उनकी गहराई में जाकर हम अपने मन को स्थिर रखेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, मन को भरपूर रखेंगे, तो हमारा जीवन सदा प्रकाशमय रहेगा, नहीं तो अंधकार में जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता रहेगा। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और त्याग बताया, जो व्यर्थ का त्याग, जो व्यर्थ का अंधकार है, जो हमारे संस्कार हैं, पुराने संस्कार, जिन संस्कारों के कारण हमारी प्रगति नहीं हो पा रही है। और दूसरा वैराग्य, वैराग्य भी अति आवश्यक है, क्योंकि हम सब इस बात से तो अनभिज्ञ हैं कि ये संसार जो बाबा मुरली में जिक्र करते रहते हैं, ये दुनिया क्या है, जैसे गोबर की दुनिया है, अंधियारा है, इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार समाया हुआ है। तो वैराग्य हमें तब आएगा जब हम संसार की पुकार भी सुनेंगे, संसार कितना चिल्ला रहा है, कितना पुकार है, उनके कितने दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं। ये तो हम यहाँ बाबा के छत्रछाया में बैठे हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन संसार में इतने दुख बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनकी हालत क्या है, इतने निरुत्साहित हो रहे हैं, इतने उदास हो गए हैं, इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनको मुक्ति कौन दिलाएगा। तो एक अपनत्व की भावना, हमारे अपनेपन की भावना नहीं जागृत होगी संसार की आत्माओं के प्रति, उनके संसार में जो नेगेटिविटी है या दूसरी बातें हैं जो हमारे जीवन में प्रोग्रेस में बाधक हैं, उनसे वैराग्य चाहिए हमको। अगर उनसे वैराग्य नहीं है तो भी हमारी प्रगति नहीं होगी है। कहीं ना कहीं राग अगर हमारा जुड़ा हुआ है तो बाबा से कनेक्शन कैसे जुड़ेगा। तो मन, बाबा ने कहते हैं बिना वैराग्य के मनसा सेवा नहीं हो सकती है। तो मनसा को हमें शक्तिशाली बनाने के लिए बेहद का वैराग्य भी जरूरी है, जीवन में त्याग भी जरूरी है, मनसा वाचा कर्मणा को श्रेष्ठ बनाना है, स्मय का महत्व रखना है, परिवर्तन की इच्छा होनी चाहिए और महसूसता की शक्ति। तो दिन प्रतिदिन फिर हमारी लगन बढ़ती, लगन अपने आप बढ़ती जाएगी, उसके लिए थोड़ा समय तो बहुत जरूरी देना है। बाबा से प्यार बढ़ाने के लिए बाबा को थोड़ा समय देंगे हम, जैसे दुनिया में भी प्यार होता है किससे होता है, उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, उसकी बात को सुनना पड़ता है, उसको थोड़ा स्वीकार करना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे संबंध बढ़ते हैं तो प्यार तो अपने आप ही हो जाता है। तो बाबा के प्रति भी हमारा प्यार तब भी बढ़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, दूसरी बातों से दूर, थोड़ा दूर हटकर अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक, जो बाबा की हमारे प्रति आशाएं हैं, श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के प्रति हम जागृत रहें, तो भी हम अपने जो भी छोटे मोटे अंधकार जीवन में आ रहे हैं, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, तो उनमें से हम मुक्ति पाकर बाबा को निरंतर सहारे का अनुभव कर सकते हैं, निरंतर उसकी मदद का, उसकी वरदानी हाथ हमारे सिर पर अनुभव हो सकता है। ज्ञान के इतने सारे बिंदु हैं, योग के इतने सारे विधियां हैं, जिन विधियों के माध्यम से हम अपने मन बुद्धि को बिजी रख सकते हैं, अंधकार से मुक्ति पा सकते हैं। ज्ञान तो बहुत विस्तार से है। ओम शांति।
शांति। अभी कुछ टॉपिक दिया नहीं है तो शायद मैं ये उचित समझता हूं कि कुछ अनुभव आपसे शेयर करें। वैसे आप, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर, पुणे से आए हैं मेरा सोसाइटी से, और भक्ति मार्ग में, ज्ञान में आने के पहले काफी समय तक भक्ति मार्ग में चलते थे। हमारे घर में भागवत सप्ताह चलता था, मेरे पिताजी ज्ञानेश्वरी के ऊपर, गीता के ऊपर प्रवचन करते थे, भजनी सप्ताह चलता था और हम भजन पूजन भी करते थे। उसका फायदा ज्ञान में आने के बाद हुआ, रामायण, महाभारत, भागवत, पंडरपुर का विठोबा, हरिपाठ के अभंग, ज्ञानेश्वरी, यह सब नए सिरे से नजर में आ गया। और उसका ही फायदा जो हम रेडियो मधुबन पे जो प्रोग्राम करते हैं अमृत धारा, उसमें हो गया। एक केनिया में गए थे हम, और केनिया में जैसे अभी सुशील भाई ने हमें व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला है, तो यहाँ के क्लासेस हम सुनते थे। एक अनुभव सुनाता हूँ कि सचिन भाई ने इस क्लास में एक कहानी सुनाई थी, और वो कहानी थी जैसे जंगलों की बात अभी सुशील भाई ने की, वैसे सचिन भाई ने कहानी सुनाई थी। रात थी, एक महिला थी, उसे बुरे बुरे सपने आते थे, वो डाब भाग रही थी, एक आकृति उसका पीछा कर रही थी, और फिर उसने कहा, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और आकृति ने कहा, सपना तुम्हारा है, तुम जानो। अभी ये कथा जो है वो मन में घुस गई थी, और वहां हम जैसे मंदिरों में गए थे, बाबा कहते हैं मंदिरों में जाके सेवा करो, और मंदिरों में जाने के बाद अगर हम बहेंगे, हम ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान देंगे, तो झट से लोग मानेंगे नहीं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम कीर्तन करेंगे तो लोग मान लेते हैं। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया है, मैं और मेरी युगल भक्ति, हम दोनों मिलके मंदिरों में जाके कीर्तन करते हैं। कीर्तन में हमारा पैकेज है एक के ऊपर एक फ्री, तो मैं कीर्तन करता हूँ बाकायदा टोपी पहन के, ये रुमाल पहन के वगैरह वगैरह झांझ देके, और भक्ति बहन उसके ऊपर फ्री ज्ञान देती है, और ये पैकेज काफी सक्सेसफुल हो गया। तो केनिया में गए थे, वहाँ एक मंदिर था सनातन धर्म मंडल, उनके जो ट्रस्टी थे वो वशिष्ठ भाई, उनसे मिले। हमने कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी से आए हैं और हम कीर्तन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जरूर करिए। तो कीर्तन में हमने, और काफी बड़ा लंबा कीर्तन हो गया, लेकिन एक जगह गए थे लक्ष्मी नारायण मंदिर में, उन्होंने हमें 10 मिनट दिए। अभी 10 मिनट में क्या बताएं? तो 10 मिनट में मुझे सचिन भाई याद आए, और सचिन भाई की स्टोरी याद आई, यही। तो हमने क्या किया, ये स्टोरी अलग तरीके से पेश की। जैसे मैंने शुरुआत की, ये महिला की कथा है, घना जंगल है, ये 2-3 वाक्य उच्चारण करने के बाद भक्ति बहन के माइक दोनों के पास था, उसने चालू किया, फिर मैंने चालू किया, ऐसे करके कथा को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। और फिर जैसे सपना तुम्हारा था, ये सपना क्या होता है, ये मेरा मन है, तो रमन दर्पण कहलाए, ये गाना ले लिया। बाकी कीर्तन में अभंग होता है, हमने ये उसमें तोरा मन दर्पण कह लिया, और मन के ऊपर फिर हमने 10-15 मिनट में, 10 मिनट उन्होंने दिया, और धीरे धीरे 15-20 मिनट तक हम चले गए, उन्होंने खुद ने दे दिया हमें। तो ऐसी सेवा बहुत जगह हो जाती है, और ये सेवा करने के बाद लोगों के पास, जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे मैं कीर्तन करता हूँ, उसके बाद भक्ति बहन जब बताती है, और मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ माताओं के या बहने वहां के, जो कुछ कन्याएं हैं उनके चेहरे पूरे उमड़ आते हैं, उनके चेहरे का भाव बहुत बदल जाता है। और एक केनिया में हमने एक प्रोग्राम किया था, हमारे एक रिश्तेदार थे, और उन्होंने एक हमें बताया था, हमें कुछ बताना है, ज्ञान देना है, तो उन्होंने स्पिरिचुअल टॉक ऐसा नाम दिया था, स्पिरिचुअल टॉक। और उन्होंने नॉर्मली वहां क्या होता है, पार्टी होती है, लोगों को बुलाते हैं, और वो भी काफी खाने पीने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि स्पिरिचुअल टॉक फॉलोड बाय डिनर, एंड ही कॉल्ड 50-60 लोगों को बुलाया, और 50-60 लोगों को बुलाने के बाद हमने प्रोग्राम किया। पहले मैंने कुछ कहा, फिर भक्ति बहन ने कुछ कहा, और आउट ऑफ 50-60 उन्होंने कहा कि ये मेरे घर में पहली बार विदाउट नॉनवेज एंड विदाउट ड्रिंक प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, खाली आपको वेजिटेरियन खिलाऊंगा। और लोग बड़े खुश हो गए, उन्होंने प्रोग्राम किया, और आउट ऑफ 50-60 16 लोगों ने कोर्स किया केनिया में आके, नैरोबी में आके कोर्स किया। वो वेदांती बहन ने हमें फोन करके बताया। सो ये जो सेवा होती है, अलग अलग प्रकार की सेवा होती है, ये सेवा बाहर भी हम कर सकते हैं, मंदिरों में जाके कर सकते हैं, और यहाँ भी भारत में बहुत सारे मंदिरों में हमने ये कीर्तन का प्रयोग किया। पहले मराठी में करते थे, लेकिन परदेश में, विदेश में हमने कीर्तन का प्रयोग हिंदी में कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी ये कथाएं हैं, कुछ अनुभव है। आज ऐसे ही अचानक मौका मिला तो फिर सोचा कि कुछ करें। थैंक यू। ओम शांति।
एक श्लोक सुनाई दो।
ओम शांति। जैसे अभी ज्ञानेश्वर जी ने सुनाया कि बाबा ने बहुत मौका दिया, जरा आवाज मेरा नहीं है ठीक क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बाबा ने जो भी विदेश में जाने का मौका दिया उस हिसाब से बाबा ही भेजता है, तो बाबा का ही सारा प्लानिंग होता है कि बच्चों से सेवा कैसे करवानी है। तो जब अमेरिका में गए थे दो बार, उस समय ही हमारा जिक्र था कि केवल कर्मणा सेवा नहीं करनी है लेकिन ज्ञान के हिसाब से भी बाबा का संदेश सब तक पहुंचाना है। लेकिन उसका रिजल्ट बाबा ने केन्या में दिया, सुजोग थेरेपी का। शायद मैं समझती हूँ कि मोहन सिंगल भाई जी ने यहाँ सीडी दिखाया, वैसे जिनसे मैंने सुजोग थेरेपी सीखी पूना में उनको मैंने पहले ही ये पूछा था कि दूसरी कक्षा का बच्चा किसी को सिखा सकता है क्या, ऐसे मेरे लौकिक गुरु को पूछा था, क्योंकि मेरा सुजोग का ज्ञान मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, दूसरी कक्षा का बच्चा पहली कक्षा को ज़रूर सिखा सकता है। तो वेदांती दीदी ने जब हमें ये निमंत्रण दिया तो वहाँ चार दिन सुजोग का स्टॉल रखा था, अल्टरनेटिव थेरेपीज के स्टॉल थे 11, उसमें रविशंकर जी का प्राणिक आर्ट ऑफ लिविंग, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारे स्टॉल थे, उसमें सबसे लास्ट सुजोग का स्टॉल को दिया था जगह। लेकिन बाबा कभी कभी कहता है ना, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, बाबा ने ही वहाँ, बाबा ही बैठा था ऐसा अनुभव किया, और उस स्टॉल पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी। चारों दिन फ्री ऑफ कॉस्ट सबका इलाज रूहानी डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया, और उसका रिजल्ट ये आया जो वेदांती दीदी का एक माइंड चल रहा था कि किसी न किसी तरीके से यहाँ की आत्माएं बाबा के घर से जुड़ती जाए। तो उनको सेंटर पर आना ही था क्योंकि चार दिन की ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होती, और सचमुच ही वंडरफुल रिजल्ट्स आए, और वहाँ कई आत्माएं बाबा के ज्ञान से जुड़ती गई, जो एक मैं समझती हूँ कि इंस्ट्रूमेंट हमारे द्वारा क्रेडिट का अकाउंट बढ़ता गया। काफ़ी अनुभव है जो ज्ञानेश्वर जी ने भी अभी सुनाए हैं। तो कीर्तन का बहुत अच्छा माहौल हुआ, उसके साथ साथ जो पूना में टच द लाइट का ट्रेनिंग बाबा करवाया था सुंदरी दीदी ने, तो उसके द्वारा भी दो स्कूल में सेवा हो गई। तो मैं समझती हूँ अभी सिर्फ अंग्रेजी में कीर्तन सीखना बाकी है, वो भी अगर आ गया तो दूसरी जगह भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में तो इसके द्वारा कई गाने भी हम दोनों ने तैयार किए और मतलब गाए। तो लोगों के दिल के अंदर अभी का एक समय ये है कि बहुत भावना है, उस भावना को हम उनके रीति से अगर ललकारे तो वो ज़रूर बाबा के बन जाते, और बाबा भी मुरलियों में कहते हैं मेरे जाकर मेरे भक्तों को ज्ञान दो, तो कराने वाला वही है, करा रहा है, और हम उसके ऊपर चल रहे हैं। अचानक सचिन भाई ये चांस दिया, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। ओम शांति।